श्री कुंदकुंदाचार्य भगवान का जो शास्त्र है उसकी हम आज 39 नंबर की गाथा को और उसके साथ साथ चार गाथाएं साथ में पांच 39 40 41 42 43 इन सबको हम एक साथ पढ़ेंगे। पहले हाँ जी देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, अथ जीव अजीव एकी भूतो प्रविशतः। क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर? अभी पहले तो हमको देखा था हमने कि यह एक रंग भूमि है, नाटक चल रहा है, इसके एक मिनट इसके अपेक्षा से यहाँ कथन किया जा रहा है। तो यहाँ क्या कहते हैं, जीव और अजीव एक बनकर रंग भूमि पर प्रवेश कर रहे हैं। अभी हमको हमने देखा था, क्या बताया था वहां पर कि यहां पर मिथ्यात्वी और सम्यक्वी दोनों प्रकार के प्रेक्षक मौजूद हैं। और यहां पर क्या हुआ कि जीव और अजीव दो अलग अलग तत्व हैं ना, वो एक बनकर रंगभूमि पर प्रवेश करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, सर्कस में भी आपने देखा होगा या अन्य जगह भी पहले ऐसा चलता था क्या, वो स्वांग लेते थे
यानी कोई,
हाँ बहुरूपिया कहो, वो हाथी बने तो हाथी बनने के लिए चार पैर होने चाहिए, तो दो आदमी ऐसी तरह से चलते थे ऐसा कपड़ा वगड़ा पहन के, ये देखने वाले को हाथी लगता था। अब ऐसा एक शास्त्र में एक कथा भी आती है कि वह बहुरूपिया था, वह बिल्कुल शेर जैसा बर्ताव करता था, यानी किसी को पता ही नहीं लगे कि ये शेर है कि नहीं। अगर आपको मालूम होगा बादशाह बीरबल की बात आपने कथाएं सुनी होंगी, तो उसमें भी ऐसी बात थी कि एक ऐसा ही बैल का सोंग लेके आता है स्वांग, तो वहां एक छोटा सा लड़का रहता है, वो ऐसा पत्थर उठा के वो उसके ऊपर डालते हैं, तो राजा उसके ऊपर गर्व होता है, क्या कर रहा है तू, बोलते ये सही है कि नहीं, सच्चा है कि नहीं, मैं देख रहा हूँ। क्यों? कि आपने देखा होगा अगर बैल के ऊपर ऐसा कोई चीज आके गिरे तो उसके स्किन जो होती है वो ऐसी थर थर करती, वाइब्रेट होती, वाइब्रेट। तो वैसा तो हुआ नहीं, तो ये नकली है, ये सच्चा नहीं है। तो छोटा बेटा ही जो बच्चा था वही आगे बीरबल बना, ऐसी कथा आपको मालूम है कि नहीं? नहीं मालूम? मुझे मालूम। वैसा मैं ये बताना चाहता हूँ कि पहले के जमाने में ऐसे हूबहू ऐसे स्वांग लेते थे, यानी कोई क्या कहते हैं जानवर का लेवे, ऐसा लेवे वैसा लेवे, तो जो हमने अभी आपको बताया था एक अपने पुराण में कथा है, तो एक ने तो ऐसा शेर कर लिया था और ऐसा जिसने ऐसा कि सामने वाले को उसने एकदम फाड़ दिया ऐसा ऐसा, तो उस समय उसको ऐसा बताया कि तू ये स्वांग लेता है तो तू मुनि का तो स्वांग लेके बता, ख्याल में, तो मुनि का स्वांग लेके तो दिखा ऐसा उसको बताया। तो उसने पूरे जैनिज्म का अभ्यास किया और उसके ऐसी तत्व ज्ञान की उसके अंदर रुचि बढ़ गई कि वो साक्षात मुनि बना, स्वांग भी लेना नहीं पड़ा। यानी ये ऐसी मैं ये कथा क्यों बता रहा हूं आपको, यहाँ जो कह रहे हैं कि जीव अजीव एक होकर प्रवेश करते हैं
वो ब्रह्म गुलाल की कथा है।
ब्रह्म गुलाल
कुछ नाम था ऐसे।
ब्रह्म गुलाल, अगर आपको कभी बाई चांस आप कभी जयपुर गए तो वहाँ उसका एक कॉमिक भी निकला है,
कॉमिक्स निकाला है उसका। हाँ,
उनके तरफ से निकाले गए। और वैसे शास्त्र में भी कथाएं आती हैं, प्रथमानुयोग भी पढ़ना चाहिए, वो ऐसा नहीं समझना कि बच्चों की स्टोरी है क्या पढ़े भाई, उसमें तो इस जीव के कैसे परिणाम अलग अलग होते हैं और प्रसंग के अनुसार कैसा वो जुदा जुदा हो मतलब परिणाम करता है, उसका फल जो होता है वो किस तरह भोगता है, ये बातें सारी आती हैं। अब यहाँ तो ये बता रहे हैं कि जीव और अजीव एक होकर प्रवेश करते हैं, तो हमको तो लगता है क्या कोई भी पहचानेगा। हाँ, जो होशियार होएगा वही पहचानेगा। अभी जीव और अजीव एक है, क्या हमने ये पहचाना है? अगर पहचाना होता तो हम सम्यक दृष्टि होते।
एक है, एक नहीं,
जुदे जुदे है ऐसा हमने नहीं पहचाना है, वो एक है ऐसा ही हम मान रहे हैं, इसलिए तो अभी तक हम मिथ्यात्वी है। देखो देखो, अभी यहाँ तो बता रहे हैं कि वो एक होके, लेकिन वहां जो कोई सम्यक दृष्टि बैठे हुए थे तो वो तो जान गए कि अरे ये तो दोनों का मिक्सचर है, दोनों एक बने हैं, ये जुदे जुदे ही है। वैसा सम्यक दृष्टि जो जीव होता है वो मैं जुदा और यह शरीर जुदा है ऐसा मानेगा तो दोनों का अलग पना हो जाएगा, एक ही भूत जो हुई थी एक हुई थी वो अलग। अभी हमारे ख्याल में तो दोनों एक ही है ऐसा हम मान रहे। देखो देखो, मेरे स्कूल अपने दुकान की बात बताता हूँ, ये स्वांग लेने के जो कोई चक्कर होते हैं ना, वो अगर पहचाना जाए कि इसने स्वांग लिया है तो भाग जाता है। कैसा कि मेरे फोटोग्राफी का धंधा था, तो फोटो बहुत लंबी स्टोरी है, मैं शॉर्ट में बताऊंगा। तो एक ने आके बोला, ओ हो व्हाट अ फोटोग्राफी, यो यो, अरे क्या, कौन निकलते, मैं हम निकलते, आप पिक्चर का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, वो क्या पूरे पिक्चर का फोटोग्राफी करने का रहता है, बोलते हैं क्या क्या कितना पैसा लेंगे। हमने कहा अभी तो हम बता नहीं पाएंगे, हम पूछ पाछ करके आपको बताएंगे। तो हमारे किसी मित्र से जाके पूछा कि भैया, अरे बोले 10,000 मिले तो बहुत हो गया, और साइन 5,000 लेना, फिर आगे की बात आगे, नहीं तो बाद में पैसा नहीं मिलता है वगैरह वगैरह। उसने सारी बातें बताई। हम गए तो वो 1 बजे आया खाना खाने के टाइम में, तो बोला क्या हो गया, बोला हम तैयार हैं, हम आपसे 10,000 रुपया लेंगे, 50% आपको एडवांस देना पड़ेगा। क्या बात करते हैं, ठहरो मैं अभी हमारे साहब से बात करता हूँ। फोन उठाया, फट बोला, बोलते ये लोग 15,000 मांग रहे देवे क्या, दे आर रियली गुड फोटोग्राफर, दे गॉट टेलीफोन एवरीथिंग। अच्छा अच्छा, वो मंजूर हो गए। तो फिर फोन किया, नहीं नहीं अरे उनके पास गाड़ी भी है, ये भी है वो भी है, दे आर डिमांडिंग 25,000, देवे क्या, तो अभी बोलता हूँ, ओके ओके एग्रीड राइट, बंद कर दिया। फिर बोला अच्छे चलो आप बहुत नसीबदार हो, ये मद्रास की पार्टी है, ये वो है, सब बातें बहुत लंबी लंबी करी। तो बोलते अभी हमको कॉन्ट्रैक्ट करने का है, बोला हाँ करो कॉन्ट्रैक्ट, ऑन साइनिंग यू हैव टू पे मी। तो बोले अच्छा आप ऐसा करो, शालीमार होटल में हम शाम को मिलेंगे, शालीमार होटल यानी वो केम्स कॉर्नर के नीचे किधर है। फिर वो बोले चलो ठीक है, तो वहाँ तक तो हम बोले, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट जो करने का है उसके 3-3 कॉपी बनानी पड़ती है, वो स्टैम्प पेपर पे करना पड़ता है, तो वो टाइम में 100 रुपये का स्टैम्प पेपर आता था, तो बोले आप ऐसा करो 100 रुपया दे दो, मैं स्टैम्प पेपर खरीद के वो सब टाइप वाइप करके लाता हूँ। तो मैं बोला नहीं यार, ये 100 रुपया मांग रहे। तो वो जो आदमी फ़ोन पे 25,000 रुपया देने की इतनी उसकी ताकत है, क्या उसके जेब में 100 रुपया नहीं होंगे? मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं, हम दोनों चलते हैं वहाँ जाके स्टैम्प खरीदते हैं, फिर आप उसके ऊपर जो टैपिंग वैपिंग करना है वो करो। ऐसा जब मैंने बोला तो मेरा भाई बोला पागल हो गया क्या तू, चल ना जाने दे ना, अभी क्या 100 रुपये को देखता है। हम किसी पे भरोसा नहीं करेंगे। बोला अच्छा आप, मैं खाना खा रहा था ना, आप हाथ वाथ धो लो, मैं अभी बाजू से सिगरेट लेके आता हूँ। वो बाजू में ईरानी का होटल था, गया और मैं हाथ धो के बाहर आके देखता हूँ तो किधर है, भग गया। तो जो स्वांग लेता है उसको अगर आप पहचानोगे तो तुम्हारे सामने खड़ा नहीं रहता है। वैसा यहां पर जीव और अजीव एक होकर आए स्वांग लेके, हम एक हैं, मैं भी शरीर हूं और शरीर ही मैं हूं ऐसा मानने वाला, मैं पर का हूं और पर मेरा है, अभी बात चली थी ना, हा? तो उसने वो स्वांग लिया, लेकिन वहां जो कोई सम्यक दृष्टि थे उन्होंने तो जान लिया तो भग गए। ये आखिर में आएगा, तो अभी मैंने बिगिनिंग में लास्ट स्टोरी आपको बता दी जीव अजीव अधिकार के ख्याल में। अरे ऐसे बहुत बातें हैं, वो इंस्पेक्टर बोल के आते हैं कि भाई आपके पास कौन सा, वो जमाने में बहुत एक कैमरा भी कोई इम्पोर्टेड रखना गुना था। तो ऐसे वक्त में आपके पास कोई है तो हम तलाशी लेने आए हैं। तो इतने में मैं अंदर जाके टेलीफोन करने को चालू किया, उसको समझ में आया कि क्यों टेलीफोन कर रहे हैं। मैं तो घर पर फ़ोन कर रहा था कि अपने घर में कैमरे जो है बाजू रख देना, वो समझा कि किसी को पुलिस को फोन कर रहा है, भागा। कहने का मतलब ये है कि स्वांग जो लेता है उसको पता लगे कि ये स्वांग लिया हुआ है तो उसकी मजाक नहीं है, चलती नहीं। आपको मालूम नहीं है कि हमारे महाराष्ट्र में एक क्या बाल गंधर्व नाम का एक आर्टिस्ट था, वो था पुरुष, स्त्री पार्ट करता था। यहाँ तक कि आपके घर में कोई प्रोग्राम होता है, महाराष्ट्र में वाले जानेंगे हलद कुंकू, यानी ऐसा मंगलागौर होता है, ये होता है, उस समय सिर्फ लेडीज लेडीज होती हैं, वो उस प्रोग्राम में जाके आवे तब भी किसी को पता नहीं लगे कि ये पुरुष अपने रूम में आया है। लेकिन जो उसको पहचानेगा तो उसकी वहां रुकता नहीं, भाग जाता था। आप तो बहुत छोटी थी उस समय, आपको मालूम भी नहीं है। हाँ हाँ सुना है ना, तो हम फेंकता नहीं है ना, बराबर। हाँ चलो शार्दुल विक्रीडित चालू करो सब।
ये लाइन पढ़ने के बाद में?
अच्छा पढ़ो पढ़ो,
देखो छंद ही पढ़ना है डायरेक्ट ना।
तो आप क्या पढ़ना चाहते हैं, श्रीमद् भगवत कुंद कुंद
आचार्य? ये नीचे नीचे
कौन सा? हवे जीव ने अजीव द्रव्य ए बन्ने एक थईने रंगभूमि मां प्रवेश करे छे। ये अभी हमने संस्कृत में पढ़ा था उसी का यहाँ।
त्यां शुरुआत में मंगल ना आशय थी, इसलिए काव्य द्वारा आचार्य ज्ञान नो महिमा करे छे। इस श्लोक में क्या आने वाला है उसकी बात करते, यहाँ ज्ञान की महिमा बता रहे श्लोक के द्वारा कि सर्व वस्तुओं ने जाननारू आ ज्ञान छे, ते सर्व जीव अजीव ना सर्व स्वांगों ने सारी रीते पिछाने छे। यानी ज्ञान ही जीव को और अजीव को उनके लक्षणों द्वारा पहचान लेता है। स्वांग है ना, वो दोनों एक जैसे लगते हैं। स्वांग यानी क्या, वो है ही नहीं और दोनों मिलकर एक हो गए, ऐसा स्वांग ले लिया है। एवू एटले सर्व स्वांगों ने पिछाननारू सम्यक ज्ञान प्रकट थाय छे, ए अर्थरूप काव्य कहे छे। अब हम यहाँ श्लोक पढ़ेंगे और बाद में उसका अन्वयार्थ देखेंगे। जीवा जीव विवेक पुष्कल दृशा प्रत्यायत पार्षदान आसंसार निबद्ध बंधन विधि ध्वंसाद विशुद्धं स्फुट आत्मा रामम अनंत धाम महसा ध्यक्षेन नित्योदितं धीरोदात्तमनाकुलं विलसति ज्ञानं मनोल्लादयत् आह्लादयत। ल है वो, ह और ल आह्लाद जैसे लिखते हैं
मनो आह्लादयत
मनोल्लादयत
ये शब्द एक चाहिए मनो और आह्लाद अभी इसका पहले हम पढ़ लेते हैं उन्होंने उसको लिया ही नहीं है
ये है ना श्लोकार्थ लिखा है
श्लोकार राइट राइट ज्ञानम
कल देखिए अभी यहाँ नया अधिकार शुरू हो जाता है तो अधिकार के पहले इन्होंने कलश लिखा है क्योंकि अभी यहाँ इंट्रोडक्शन है ना मंगलाचरण जैसे थे वैसे प्रत्येक अधिकार के शुरुआत में पहले कलश लिखकर फिर बाद में वो कहेंगे कि अभी इस गाथा का ये विषय है सके के
जैसे हमने पहले देखा था नमस् समय सारा है वो किसका है हाँ वैसे यहाँ उन्होंने शुरुआत में कलश दिया है देखो क्या कह रहे देखेंगे हम ज्ञानम ज्ञान चेते मनोल्लादयत यहाँ पर भी अलग अलग किया है मन ने आनंद रूप करतू विलसती एटले प्रकट थाय छे कौन ज्ञान केवू छे ते तो जीव जीवना स्वांग ने जोनारा महापुरुषों ने पार्षदान लिखा ना तो जीव अजीव विवेक पुष्कल दृशा जीव अजीव नो भेद देखनारी अति उज्ज्वल निर्दोष दृष्टि वड़े प्रत्याययत भिन्न द्रव्यनी प्रतीति उपजावी रहयूं छे आ संसार निबद्ध बंधन विधि ध्वंसात अनादि संसार थी जेमनु बंधन दृढ़ बंधायू छे एवा ज्ञानावरणादि कर्मों ना नाश थी विशुद्धम एटले विशुद्ध थयूं छे स्फुटत स्फुट थयूं छे स्फुट एटले स्पष्ट जेम फूलनी कड़ी खिले तेम विकास रूप छे वळी ते केवू छे आत्म आरामम जेनु रमवानु क्रीडावन आत्माज छे अर्थात जेमा अनंत देवना आकार आवीने झड़के छे तो पन पोते पोताना स्वरूप माज रमे छे अनंत धाम जेनो अनंत प्रकाश अनंत छे अध्यक्षेण महसा नित्य उदितम प्रत्यक्ष तेजती जे नित्य उदय रूप छे वड़ी ते केवु छे धीरोदात्तम धीर छे उदात्त एटले उच्च छे अने तेथी अनाकूलम अनाकूल छे सर्व इच्छाओती रहित निराकूल छे आई धीर उदात्त अनाकूल ए त्रण विशेषणों शांतरू नृत्यना आभूषण जाणवा एवू ज्ञान विलास करे छे यहाँ ज्ञान की ही महिमा गाई है उसको हम दोबारा पढ़ेंगे अभी तो सिर्फ पढ़ लिया था अभी हम देखो क्या कहते हैं कि जे ज्ञान छे अभी यहाँ जो ज्ञान अभी हमने देखा था कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है ना तो उस ज्ञान की यहाँ महिमा गा रहे हैं तो कहते ज्ञान छे ते मन ने आनंद रूप करतू प्रकट थाय छे एक बात विशेष ध्यान में रखना कि कभी भी अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय आनंद दोनों साथ में ही होंगे यानी किसी को अतीन्द्रिय यानी अपने आत्मा का अनुभव आए और उसको आनंद की प्राप्ति न होवे ऐसा होगा ही नहीं लेकिन इसमें क्या है आत्मा का जो अनुभव है वह अतीन्द्रिय ज्ञान है तो उस अतीन्द्रिय ज्ञान के साथ अतीन्द्रिय आनंद का वेदन होगा ही होगा और जो कोई सम्यक दृष्टि जीव है या किसी अनादिकालीन मिथ्यादृष्टि को आत्मा का अनुभव आता है होता है रादर तो उस समय उसको अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है और ये जहाँ आनंद की जो प्राप्ति होगी वही उसके आत्मानुभूति हुई है इसका लक्षण है नहीं समझ में ख्याल में है कि नहीं बता एक तुम्हारी जैसी लड़की हमारे पास आई हे पंडित जी हमको सम्यक दर्शन हुआ। अच्छा बहुत बढ़िया बात है, क्या हुआ? बोले हमको जब ही आत्मानुभव हुआ हमको तो एकदम हल्का हल्का लगने लगा कि हम तो ऐसा कि जैसा कि इस धरती पर है ही नहीं, एकदम हल्के हल्के बस ऐसा लगने लगा। तो मैंने पूछा उससे, क्या तूने मोनाको बिस्किट खाए? क्या कहना चाहते हैं? हल्का भारी रूखा चिकना ठंडा गरम कड़ा नरम, ये किसकी पर्याय है बेन? पुद्गल द्रव्य की। पर पुद्गल द्रव्य की कौन से गुण की? हाँ ये पूरा बोलना चाहिए ना। जैसा हम किसी से पूछे भाई तुम्हारा नाम क्या है, तो खाली पीना। अरे भाई तेरे पिता का नाम क्या है, तेरे सरनेम क्या है, सब बताना पड़ेगा ना। पुलिस में जाओगे वो पकड़ोगे, क्या नाम है तेरा? पीनू। नहीं चले, ख्याल में पूरा नाम बताना पड़ेगा। वैसा हम जब शास्त्र का उत्तर देते हैं तो पूरा पूरा सही उत्तर देना चाहिए। क्या कहा आपने? यह पुद्गल द्रव्य के स्पर्श गुण की पर्याय है। तो ये आत्मा हल्का हल्का वो उसको महसूस हुआ, तो क्या उसने आत्मा का अनुभव किया, क्या पुद्गल का किया? ख्याल में? अब यहाँ क्या कह रहे हैं, इसके कंपैरिजन में जब इस जीव को अपने आत्मा का अनुभव होता है तब उसमें रहने वाले अनंत गुण जो है वो अनंत गुणों में से अनंत गुण तो स्वभाव रूप से ही परिणमित है अनादि से, और जो बचे अनंत गुण है जो विभाव रूप से परिणमित हो रहे हैं वो एक साथ स्वभाव रूप से परिणमित होंगे। अब वो उसमें अनादि से स्वभाव रूप परिणमित हो रहे हैं, वह ज्ञान गुण जो था वह भी स्वभाव रूप से परिणमित नहीं हो रहा था, यानी आत्मानुभूति के लिए स्वभाव रूप कहा गया है। और जो आनंद था यानी सुख रूप जो सुख गुण था वह भी उसका सुख अतीन्द्रिय सुख वह उसका स्वभाव रूप परिणमन है वह नहीं हो रहा था। अब ये अभी देखो श्रीमद जी ने बताया था ना, हाँ आपको याद है, दिन रात वही सुनते हो। अच्छा कि सर्व गुणांश ते सम्यक सो, क्योंकि कहीं पर जाओ उसको तो गुरु मिलते ही हैं, घर में जाओ या बाहर में जाओ। क्यों सब? स्कूटर में भी। हाँ तो क्या कहना चाहते हैं कि भाई हम तो यहाँ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की बात करते हैं तब तीन गुण की मुख्यता से कहते हैं, लेकिन वहां तो अनंत गुणों का स्वभाव रूप परिणमन चालू होता है। तो यहाँ हम शॉर्ट में क्या कहते हैं कि जहां जहां अतीन्द्रिय ज्ञान है यानी आत्मा का अनुभव है वहां वहां अतीन्द्रिय सुख भी है, आनंद का वेदन भी है, और वह वेदन जो आत्मा का हो रहा है, आनंद जो ज्ञान में आ रहा है अनुभव में आ रहा है वही आत्मानुभूति हुई है, इसका प्रूफ है। और दूसरा कहता है मुझको तो एकदम सफेद 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 ऐसा एकदम प्रकाश प्रकाश दिखने लगा, क्या हुआ? अच्छा मैं समझा कि आशियन पेंट को देख के आया था। देखो ये कैसी लोगों की मान्यता है, तो इसलिए हमेशा अरे भाई तुझे आनंद होता है तुझे दुख होता है तो तुझे पता लगेगा क्या दूसरे को पता लगेगा? किसी के सर में दुखता है, अभी हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं कि डॉक्टर हमारे इधर पेट में दुखता है, पेट में दुखता है किधर दुखता है, फिर इधर दबाएंगे इधर दुखता है नहीं, इधर दबाएंगे इधर दुखता है नहीं, इधर। अरे तू डॉक्टर है ना तो तेरे को समझना चाहिए ना किधर दुखता है, तो एक्यूट पेन है क्या और क्या क्या होता है डॉक्टर साहब? ऐसा बोलेंगे तो वो तो हम जब बताएंगे ऐसा ऐसा है ना तो फिर बाद में वो डायग्नोस करेंगे, हाँ तुझे अभी क्या हो गया अपेंडिसाइटिस हो गया। कहने का मतलब ये दुखता तो स्वयं को दूसरा नहीं जानेगा, वैसा अनुभव स्वयं करेगा, आनंद का वेदन स्वयं को होगा, और हम दूसरे से जाके पूछते साहब मुझे जरा बताना प्लीज, आप हमारे हैं ना तो आपको तो हमको बताना ही पड़ेगा कि हमको आत्मानुभव हुए। अच्छा सोच के बताएंगे तो वो लगता है कि अरे क्या क्या आत्मानुभव हुए क्या, चल चल ऐसा बोलेंगे पागल है, खुद को बहुत छाना समझते हैं, ऐसा करके हमको उड़ा देंगे। ये क्या समझाना चाहते हैं कि देखो भाई, यहाँ तो एक बात निश्चित ध्यान में रखना कि अपना अनुभव हुआ है या नहीं, ये हम स्वयं ही जान सकते हैं। तो ये व्यक्ति सम्यक दृष्टि है कि नहीं, हम जानेंगे कि नहीं, नहीं जानेंगे, क्योंकि उसका वेदन उसके साथ। ख्याल में आए? तो यहां कौन सी बात चल रही है कि ज्ञान चेते मन ने आनंद रूप कर तू प्रकट थाय छे। ये कैसा ज्ञान है? सम्यक ज्ञान की बात कर रहे हैं, जो अपने आत्मा का अनुभव कर रहा है, ऐसा जो ज्ञान है वो कैसा है कि आनंद नु वेदन कर तू प्रकट थाय छे। बात में ख्याल में आए? क्या कह रहे? देखो, जीव अजीव ना स्वांग ने जोनारा महापुरुषों ने जीव अजीव नो भेद देखनारी अति उज्जवल निर्दोष दृष्टि वड़े भिन्न द्रव्य नी प्रतीति उपजावी रहयू छे। ये कौन उपजावी रहयू छे? प्रतिवत है देखो देखो, हम किसकी महिमा गा रहे हैं अभी? ज्ञान के हा? आत्मा की है, बराबर है, लेकिन यहाँ ज्ञान गुण की बात चल रही है ना। पहले ही वाक्य में क्या लिखा है देखो देखो, फिर से उल्टे पेज में देखो। ज्ञान छेते, पहले पेज में देखना क्या कह रहे। ज्ञान छेते शू करे जे? जीव जीवना स्वांग ने जोनारा महापुरुषों ने जीव जीव नो भेद देखनारी अति उज्ज्वल निर्दोष दृष्टि वड़े भिन्न द्रव्यनी प्रतीति उपजावी रहयूं छे। यहाँ सीधे भाषा में बोलना हो तो ज्ञान के कारण ही इस जीव को दृष्टि, सही दृष्टि, सही श्रद्धा, सही प्रतीति उत्पन्न होती, ये ज्ञान उत्पन्न करावे छे। ऐसा लिखा क्या लिखा देखो, निज द्रव्यनी प्रतीति यानी अपने स्वद्रव्य की श्रद्धा उपजावी रहयूं छे। कौन? तो अपना ज्ञान। हाँ बरोबर। अभी आगे कहते हैं, अनादि संसार थी जेमनु बंधन दृढ़ बंधायु छे, याने अनादि संसार थी यानी अनादि काल से क्या हो गया इस जीव को? कर्म का बंधन है। ये कर्म कौन से हैं? दृढ़ बंधन हुआ है। और वो उसमें कौन कौन लिया? ज्ञाना वर्णादि कर्मों ना नाश थी विशुद्ध थयु छे, स्फुट थयु छे, जेम फूलनी कड़ी खिले तेम विकास रूप छे। अभी यहाँ तो ये बता रहे हैं, यहाँ तो ये परिपूर्ण ज्ञान खिल गया है। वह केवल ज्ञान की अपेक्षा भी हम कह सकते हैं और सम्यक दर्शन की अपेक्षा भी इसको हम समझ सकते हैं। तो अभी हम केवल ज्ञान की अपेक्षा से समझेंगे, क्योंकि शुरू में तो ज्ञान की जो बात की वो सम्यक दृष्टि को भी लागू होती है, लेकिन यहाँ तो बताया क्या देखो कि अनादि संसार थी जेमनु बंधन दृढ़ बंधायु छे, एवा ज्ञानावरणादि कर्मों ना नाश थी विशुद्ध थयु छे, स्फुट थयु छे, जेम फूलनी कड़ी खिले तेम विकास रूप छे। वड़ी ते केवू छे के जेनु रमवानु क्रीड़ावन आत्मा छे, याने वह ज्ञान कहाँ हमेशा रममान हो रहा है। जैसे अभी हमको, अभी हम किसी को समझ में आया क्या क्या हम अमेरिका जा रहे हैं? भाई आप उधर जाओगे ना तो वो क्या नायगारा फॉल देख के आना, अरे सू जोवा जो ऊंचे। तो जिसको उसकी महिमा है उसका मन, भले वो हिमालय में बैठा हुए कन्याकुमारी, वो उसको ही देखेगा। किसको? अपने पर्टिकुलर कोई विशिष्ट बात को। वैसे इस ज्ञान को अपने स्वरूप का अनुभव हुआ है तो बार बार उधर ही जावे, ऐसा उसका मन कर रहा है। हम जैसा बगीचे में, हम पहले तो हम हर संडे को वो, आज कौन सा विहार लेक, कल कौन सा तो पवई लेक, और क्या तो नेशनल पार्क, हर संडे को ट्रिप मारते थे। क्रीड़ा करवा क्या? नहीं नहीं, यहाँ क्या लिखा है? जेनु क्रीड़ावन आत्मा छे, यानी वन में क्रीड़ा करने जाते थे कि वहाँ हमको बहुत मजा आती है। वैसे ये ज्ञान कैसा है? अपने स्वरूप में एकाग्र हो, वहां रममान होएगा, वहां क्रीड़ा करेगा, ऐसा बता रहे। तो क्या कहते? जेनु रमवानु क्रीड़ावन आत्मा छे, અર્થાત જેમાં અનંત જ્ઞેયોના આકાર આવીને ઝળકે છે. દેવું કૈસી બઢિયા બાત હૈ કે જ્ઞાન મેં લોકા લોક ભી ઝલકતા હો તબ ભી ઉનકા ધ્યાન પર તરફ ન જાતે હુએ અપને સ્વરૂપ મેં એકાગ્ર હૈ. ક્યાં કહા અનંત જ્ઞેયોના આકાર આવીને ઝળકે છે. તો ક્યાં યે મેં આપસે પૂછુંગા, કેવલી કે હિ જ્ઞાન મેં અનંત આકાર ગેયો કે આકાર ઝલકતે હૈ યા અન્ય કે ભી ઝલકેંગે? વિરેશભાઈ, કિસકે કિસકે જો કેવલ જ્ઞાની નહીં હૈ ઉસકે? બતાઓ બતાઓ કૈસે. મેં બતાઉંગા કે આપકા ઉત્તર બિલકુલ સહી હૈ. નહીં નહીં, જ્ઞાનવર્ણિ કર્મોસે કોઈ મતલબ નહીં હૈ. બહુ નજદીક આયે આપ, લેકિન ફિર વાપસ પીછે જા રહે. હા બોલો બોલો. મેં યે પૂછા કેવલી અનંત ગેયો કો જાનતા હૈ, યે બાત તો નક્કી હૈ કે ઉસમે ડાઉટ હૈ અભી આપકો. તો ક્યા અન્ય જિસે કેવલ જ્ઞાન નહીં હૈ એસા જીવ અનંત ગેયો કો જાનેગા ક્યા નહીં જાનેગા? તો વો કૈસા જાનેગા? હા આપ બોલો. આપકા કહેના હૈ શક્તિ રૂપ સે તો કેવલ જ્ઞાન અંદર પડા હુઆ હૈ. શક્તિ રૂપ સે પડા હૈ, વ્યક્તન ક્યા હૈ? વ્યક્ત નહીં હૈ. ફિર ભી હા યહાં હમારે વીરુભાઈ કહેતે હૈ કે અનંત ગેયો કો જાનેગા, તો હમે પ્રૂવ કરના ચાહીએ ના, ઉસકો સપોર્ટ કરના ચાહીએ કે નહીં? આપ બતાના ચાહતે બોલો. હા જી. અરે નહીં રે ભાઈ, મેં કહેતા હું મિથ્યા દૃષ્ટિ જીવ અનંત ગેયો કો જાનેગા કે નહીં? આપ જાને તો ઓર લંબા ક્યાં બતાએ. હા અચ્છા, આગમ કે દ્વારા જાનેગે. અચ્છા અચ્છા, ઓર કુછ કહેને? હા દેખો મેં આપ, હા અનંત ગેયો કો જાનેગા કે નહીં? જાનેગા તો ક્યું કૈસા ક્યું છોડો, કૈસા જાનેગા? હા યે દેખો, યે ક્યા હૈ? ક્લિફ હૈ. ઇસમે કિતને પરમાણુ હૈ? હા આ ગયે ના અનંત. અનંતો કો જાના કે નહીં? ગેયો કો. અરે યે શરીર મેં કિતને પરમાણુ હૈ? શરીર કો જાન રહે કે નહીં તુમ? ખ્યાલ મેં આયા કે નહીં? યહાં તો કે અનંત ગેયો કો જાન રહે કે નહીં જાન રહે? ખ્યાલ મેં આયા નહીં બેન? હા દીપેશભાઈ, બાત ખ્યાલ મેં આતી હૈ? એક ઉંગલી કે ઇતને પોર્શન મેં અનંત પરમાણુ હૈ, તો પૂરે શરીર મેં કિતને યે ઇતને સારે. હમ તો ક્યાં એક પુસ્તક હૈ એસા માનતે, યે એક પુસ્તક હૈ. અરે ઇસ પુસ્તક મેં સમજો 200 પન્ને હૈ, 400 પન્ને હૈ, એક એક પન્ને મેં અનંત પુદગલ પરમાણુ હૈ. થોડા વિશ્લેષણ કરેંગે તો એ બાત ખ્યાલ મેં આયેગી. દેખો યહાં ક્યાં કહે રહે, દેખો કે જેનું રમવાનું થઈ ગયું તો પણ પોતે પોતાના સ્વરૂપમાં, અર્થાત એ નીચે સે પાંચમી છઠ્ઠી લાઈન હૈ, જેમાં અનંત જ્ઞેયોના આકાર આવીને ઝળકે છે તો પણ પોતે પોતાના સ્વરૂપમાં જ રમે છે. યહાં તો કેવલ જ્ઞાન કી અપેક્ષા વાત કર રહે હૈ કે કેવલી તો લોકાલોક કે સમસ્ત પદાર્થો કો એક સમય મેં જાનતે હૈ, ફિર ભી ઉસમે રમમાન નહીં હોતે, અપને હિ સ્વ સ્વરૂપ મેં હિ રમમાન હો રહે હૈ હોતે હૈ, જેનો પ્રકાશ અનંત છે. અનંત ધામ કા અર્થ ઉન્હોને જેનો પ્રકાશ અનંત છે. અચ્છા યે મેં ભી નહીં સમજ પાયા હો. ઉજ્જવલા આપ બતાએગી ક્યા? જેનો પ્રકાશ અનંત ધામ કા અર્થ ઉન્હોને જેનો પ્રકાશ અનંત છે કર્યો છે. હા જી. નહીં નહીં, ટ્રાન્સલેશન હૈ, અપેક્ષા ક્યાં હૈ હમે ખ્યાલ મેં નહીં આ રહી ના, ઓર હમ કુછ ભી બકે વો બરાબર નહીં. ચલો ઠીક હૈ, ઇસકો હમ આગે દેખતે હૈ, સ્વામીજી જબ બતાએંગે તબ તો ખ્યાલ મેં આ જાયેગા. અબ કહે રહે પ્રત્યક્ષ તેજ થી જે નિત્ય ઉદય રૂપ છે, જેનો પ્રકાશ, હા પણ અનંત ધામ કા, યાની જ્ઞાન જો હૈ ઉસકો પ્રકાશ જો હૈ, યાની જ્ઞાન કા જાનના જો હૈ વો અનંત હૈ, એસા બતા રહે. અબ કહે છે પ્રત્યક્ષ તેજ થી જે નિત્ય ઉદય રૂપ છે, યે તેજ કહો યા ઉસકા જાનના કહો, એક હી બાત હૈ, વો હંમેશા જાનતે રહેતે. વળી કેવું છે કે ધીર છે. જ્ઞાન કેવું છે? ધીર છે, ઉદાત્ત છે અને તેથી અનાકુળ છે. સર્વ ઈચ્છાઓથી રહિત નિરાકુળ છે. અહીં ધીર, ઉદાત્ત, અનાકુળ એ ત્રણ વિશેષણો શાંતરૂપ નૃત્યના આભૂષણમાં જાણવા, એવું જ્ઞાન વિલાસ કરે છે. એ જ્ઞાન કી વાત ચાલ રહી ને? અબ ભાવાર્થ પડતે. આ જ્ઞાનના જ્ઞાનનો મહિમા કયો? જીવ જીવ એક થઈ રંગભૂમિમાં પ્રવેશ કરે છે તેમને આ જ્ઞાન જ ભિન્ન જાણે છે. એ જીવ જીવ એક હો કે આય ને તો ઉસકો વો ભિન્ન ભિન્ન હૈ એસા સિર્ફ જ્ઞાન હી જાન સકેગા, જાણતા હૈ. જેમ નૃત્યમાં કોઈ સ્વાંગ આવે તેને જે યથાર્થ જાણે તેને સ્વાંગ કરનારો નમસ્કાર કરી પોતાનું રૂપ જેવું હોય તેવું જ કરી લે છે. તેથી તેવી રીતે અહીં પણ જાણવું, આવું જ્ઞાન સમ્યક દ્રષ્ટિ પુરુષોને હોય છે, મિથ્યા દ્રષ્ટિ આ ભેદ જાણતા નથી. અભી યે જો પાંચ શ્લોક હૈ વો હમ બાદ મે પઢેંગે, પહેલે ઇસકે ઉપર કુછ સ્વામીજીને બતાયા હોગા, દેખ લેતે. હા, અગલે પૃષ્ઠ પર, પાંચ નંબર કે પૃષ્ઠ પર આઈએગા. દેખો યે બીચ મે જો ફૂલ હૈ ના ઉસકો છોડ કે આગે જાતે હૈ. હવે જીવ દ્રવ્ય અને અજીવ દ્રવ્ય એ બંને એક થઈને રંગભૂમિમાં પ્રવેશ કરે છે. ત્યાં શરૂઆતમાં મંગળના આશયથી કાવ્ય દ્વારા આચાર્ય જ્ઞાનનો મહિમા કરે છે કે સર્વ વસ્તુઓને જાણનારું આ જ્ઞાન છે. આ જ્ઞાન એને જ્ઞાન કી પ્રત્યક્ષતા બતાવીએ. તે જીવ અજીવના સર્વ સ્વાંગોને સારી રીતે પીછાણે છે. એવું સર્વ સ્વાંગોને પીછાણનારું સમ્યક જ્ઞાન પ્રકટ થાય છે એ અર્થરૂપ કાવ્ય કહે છે. સમયસર કળશ 33 શ્લોકાર્થ ઉપરનું પ્રવચન. જ્ઞાન કેવું પ્રકટ થાય છે? તો કહે છે, જ્ઞાનમ મનોલ્લાદયત વિલસતી. જ્ઞાન છે તે મનને આનંદરૂપ કરતું પ્રકટ થાય છે. અહીં જ્ઞાન અને આનંદ એ મુખ્ય બેની વાત કરી છે. જ્ઞાન કહેતા જે જીવ એટલે શુદ્ધ જીવ તેની સમ્યક જ્ઞાનરૂપ અવસ્થા મનને એટલે આત્માને આનંદરૂપ કરતી પ્રકટ થાય છે. હવે યહાં તો સમ્યક દ્રષ્ટિ કી વાત લી હૈ, સમ્યક જ્ઞાની કી. જ્ઞાન પ્રકટ થતા સાથે અતિન્દ્રિય આનંદ હોય તો તેને જ્ઞાન કહીએ. જ્ઞાન પ્રકટ થયાની આ મુખ્ય નિશાની છે. બતાય ને કે અતિન્દ્રિય જ્ઞાન યાને આત્માનુભૂતિ જિસે હુઈ હૈ ઉસે આનંદ કી પ્રાપ્તિ હોગી હી. અતિન્દ્રિય આનંદ હોય તેને તો તેને જ્ઞાન કહીએ. જ્ઞાન પ્રકટ થયાની આ મુખ્ય નિશાની છે. અતિન્દ્રિય આનંદનો અનુભવ હોય તો આત્મા અનુભવ ન હોય તો જ્ઞાનનું પ્રકટવું પણ હોતું નથી.
પ્રવચન સાર મેં હમને દેખા થા ને, અતિન્દ્રિય આનંદ જ્ઞાન હૈ વહી અતિન્દ્રિય સુખ હૈ ઉસકી બહોત સારી ગાથાએ દેખી થી હમને પહેલે.
હવે કહે છે કેવું છે તે જ્ઞાન? પાર્શદાન જીવ અજીવ વિવેક પુષ્કળ દૃશા પ્રત્યાયયત. જીવ અજીવના સ્વાંગને જોનારા મહાપુરુષોને જીવ અજીવનો ભેદ દેખનારી અતિ ઉજ્જવળ નિર્દોષ દ્રષ્ટિ વડે ભિન્ન દ્રવ્યની પ્રતીતિ ઉપજાવી રહ્યું છે. ભગવાન આત્મા ત્રિકાળ એકરૂપ અખંડ જ્ઞાન અને આનંદનું નિધાન છે. એ નિધાન કા અર્થ સમજમાં આવે ને? નિધાન યાને ખજાના જીસકો હમ કહેતે હૈ. હા, ભંડાર, બરાબર. એ ચૈતન્ય સ્વભાવની જે દ્રષ્ટિ પ્રકટ થઈ અર્થાત નિજ નિધાનને જોનારી જે દ્રષ્ટિ થઈ તે અતિ ઉજ્જવળ અને નિર્મળ દ્રષ્ટિ છે. એ દ્રષ્ટિ જીવ અજીવને ભિન્ન ભિન્ન કરી દેખે છે. આવી નિર્મળ દ્રષ્ટિ વડે પ્રાપ્ત થયેલું જ્ઞાન ગણધરાદી સંત મહંતોને જીવને અજીવ ભિન્ન દ્રવ્યો છે એવી યથાર્થ પ્રતીતિ ઉપજાવી રહ્યું છે. અચેતન શરીર અને રાગાદિથી ચૈતન્ય ધામ પ્રભુ આત્મા ભિન્ન છે એમ તે જ્ઞાન સુસ્પષ્ટ બતાવી રહ્યું છે. અભી દેખો યહાં ક્યા બતાના ચાહતે હૈ, ઉન્હોને કોણ સા અધિકાર લિખના ચાલુ કિયા હૈ, હા, જીવ ઓર અજીવ. તો યહાં ક્યા કહે રહે, જીવ કો તો જીવ મેં રખા ઓર અજીવ કો કિસ મેં રખા, દેખો દેખો દેખો, શરીર અને રાગાદિ ઇનકો અજીવ મેં રખા, રાગ કો ભી અજીવ મેં ડાલ દિયા, ક્યુંકિ વો પુદગલ કે નિમિત્ત સે ઉત્પન્ન હોને વાલા હૈ. ઇસલે ક્યા કહા, અચેતન શરીર અને રાગાદિ, તો રાગાદિ કો ભી ક્યા કહા, અચેતન, ખ્યાલ મેં આય? તો ઇન દોનો કો અચેતન બતાય ક્યું, હવે વો તો રાગ તો આત્મા મેં ઉત્પન્ન હો રહે ના, હા, વો અચેતન ઇસલિયે હૈ કે રાગ જો યાને જો શુભ રાગ કહો, વો રાગ ના સ્વયં કો જાનતા હૈ કે મેં રાગ સ્વરૂપ હું, ના અન્ય કો જાનતા હૈ, ઇસલિયે વો ક્યા, અચેતન હૈ. ખ્યાલ મેં? દેખો એક એક શબ્દ ભી એસે સહી રૂપ સે હૈ કે હમે થોડા સા સમજને સે આનંદ આતા હૈ. ક્યા કહે રહે દેખો, કે અચેતન શરીર અને રાગાદિથી, ઓર યે મેં કૈસા હું, ચૈતન્ય અને જ્ઞાન દર્શન કા ધામ હું, યાને ઉસમે હી વહ સ્થિત હૈ, એસા જો કોઈ પદાર્થ હૈ તો વો ચૈતન્ય ધામ પ્રભુ આત્મા, સાદા સુદા આત્મા નહીં લ્યા, જો ત્રિકાળી જો પ્રભુ સ્વરૂપ આત્મા, ત્રિકાળી દ્રવ્ય હૈ, એ ભિન્ન છે કોનાથી, અચેતન શરીરથી અને રાગાદિથી, એમ તે જ્ઞાન સુસ્પષ્ટ બતાવી રહ્યું છે. દોનો અપેક્ષા લગેગી, આપકા જો કહેના હૈ કે રાગ પરદ્રવ્ય કો દેખ કર હોતા હૈ, એ પરદ્રવ્ય પુદગલી હૈ, ઇસલિયે ઉસકો પુદગલ કહા ગયા હૈ, યા રાગ સ્વયં કો ભી નહીં જાનતા ઓર પર કો ભી નહીં જાનતા હૈ, ઇસલિયે ઉસકો પુદગલ કહા હૈ, દોનો કારણ સે ઉસકો પુદગલ કહા. ખ્યાલ? હા, એસા નહીં હોગા, ક્યુંકિ યે વિભાવ રૂપ પરિણમન હૈ ના, કોણ સા રાગ કા જો પરિણમન હૈ વો વિભાવ રૂપ પરિણમન હૈ, સ્વભાવ રૂપ નહીં હૈ, ઇસલિયે ઉસકો જુદા કિયા હૈ. इसीलिए तो बताए ना, उसमें ज्ञान नहीं है, वो क्राइटेरिया अन्य में नहीं लगा सकते, क्योंकि वो विभाव रूप, अभी हम देखो विभाव रूप तो यहाँ दो ही बातें दिखाएंगे आपको मुख्यतया, एक तो श्रद्धा की बात से और एक तो चारित्र की अपेक्षा से. वहाँ आनंद जो है यानी सुख गुण है वह भी विभाव रूप ही परिणम रहे, उसकी बात यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ तो ज्ञान दर्शन चारित्र की ही बात करेंगे. વળી આ સંસાર નિબદ્ધ બંધન વિધિ ધ્વંસાત વિશુદ્ધમ સ્ફુટત, અનાદિ સંસારથી જેમનું બંધન દૃઢ બંધાયું છે એવા જ્ઞાના વર્ણાદિ કર્મોના નાશથી જે વિશુદ્ધ થયું છે, સ્ફુટ થયું છે, જેમ ફૂલની કળી ખીલે તેમ જે વિકાસ રૂપ છે આવું આઠે કર્મથી અને આઠે કર્મના નિમિત્તથી સત્તા થતા નિમિત્તથી થતા ભાવોથી રહિત ભગવાન આત્માના શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વભાવને પ્રકટ કરતું આનંદ સહિત જ્ઞાન પ્રકટ થાય છે. સંસાર દશા વખતે પણ આઠ કર્મ અને તેમના નિમિત્તથી થતા ભાવથી ભગવાન આત્મા ભિન્ન જ છે. સિદ્ધ દશા વખતે આઠ કર્મથી રહિત થાય છે એ તો પર્યાય અપેક્ષાથી વાત છે, પણ જીવદ્રવ્યના સ્વભાવમાં તો આઠે અજીવ કર્મનો ત્રિકાળ અભાવ છે. દેખો યહાં અલગ અલગ અપેક્ષાથી કથન કિયા જાતા હૈ, વહાં તો કભી દ્રવ્ય કી અપેક્ષાથી કથન કરેંગે, કભી પર્યાય કી અપેક્ષાથી કથન કરેંગે. તો સ્વભાવ કી અપેક્ષાથી દેખા જાય તો કહે રહે હૈ કે સિદ્ધ મેં તો આઠ કર્મ નહીં હૈ, तो यानी सिद्ध के साथ कहो, क्या सिद्धों के आठ कर्म नहीं है, तो ये किस अपेक्षा से बात की है? हाँ हाँ इंदुबेन, क्या बताया आपने? स्वभाव अपेक्षा। और आप में आठ कर्म है क्या नहीं? अगर नहीं जवाब आया तो किस अपेक्षा से? और सिद्धों के आठ कर्म, उन सिद्ध दशा क्या है? तो पर्याय में, पर्याय की बात करेंगे ना, ख्याल में है ना? तो देखो यहाँ बहुत अच्छा वाक्य दिया है, थर्ड लाइन में है, देखो ऊपर लिखा ना, कर्मती रहित थाय छे, ये तो पर्याय अपेक्षा की बात छे। सिद्ध दशा वक्ते, ये तो सेकंड लाइन में मैं पढ़ रहा हूँ, सिद्ध दशा वक्ते आठ कर्मती रहित थाय छे, ये तो पर्याय अपेक्षा थी बात छे। है बात? अब आगे क्या समझाते हैं? पण, यानी पण को छोड़ दो, जीव द्रव्य ना स्वभाव मा तो ये कौन से जीव की बात कर रहे हैं? हाँ, निगोद की, सिद्ध की, हाँ समझ में आया? ये तो यूनिवर्सल स्टेटमेंट है ना। तो क्या कहते हैं? जीव द्रव्य ना स्वभाव मा, तो देखो जितने जीव है उनके सबके स्वभाव अलग अलग होंगे कि नहीं? हाँ, तुम कैसी शांत हो, अमोल कैसा गर्म है, दोनों जीव हो कि नहीं? तो दोनों का स्वभाव एक है? अरे वाह, बहुत बढ़िया, अच्छा काम करते हो। क्या कहा उसने? पर्याय में भिन्नता है लेकिन स्वभाव देखा जाए तो दोनों ही एक जैसे। कैसे? सिद्धों जैसे, स्वभाव की अपेक्षा से। वही बात कह रहे, जीव द्रव्य मा स्वभाव मा तो आठे अजीव कर्मनो त्रिकाल अभाव छे। लेकिन जब जब हम कहते हैं कि भाई ये अनादि से कर्म बंध से सहित है, वो पर्याय की बात कर रहे हैं। स्वभाव में, अरे कर्म ने छुआ ही नहीं है ना, कर्म ने तूने कर्म को बांधा ही नहीं ना, कर्म ने तुझे तकलीफ दी ही नहीं ना, ये कभी कहते हैं हम कि स्वभाव की अपेक्षा से बात करना है? और हम पर्याय की अपेक्षा से तो इतना उसमें फैमिलियर हो गए हैं, उसमें इतने रचे पचे हैं कि कभी भी हम पर्याय अपेक्षा से ही बात करते हैं। हम किसी से पूछे, क्यों साहब आप ऐसा तकलीफ क्यों हो रही? क्या करें साहब, कर्म ने तो हमको ऐसा सताया है। अभी जो ऐसा मानता है कि कर्म मुझे रुलाते हैं, डुलाते हैं, संसार में चक्कर घुमाते हैं, तो उसको बताते कि तूने आज तक कर्म ही नहीं बांधा है। ये अच्छा है भाई आपका। हाँ देखो, आपको एक स्टोरी बोलता हूँ, आपके लिए नहीं है इसलिए आपको बोलता हूँ, आपके लिए भी है नक्की। ये पहले उज्ज्वला डिस्पेंसरी में काम करती थी, मतलब अपने स्वयं की डिस्पेंसरी थी, पर उसके क्या बोलते हैं वो, कंपाउंडर नहीं था, क्योंकि दोपहर में 12 से 5 टाइमिंग, बच्चे स्कूल में जावे तो उसका डिस्पेंसरी चालू, बच्चे घर में आवे डिस्पेंसरी बंद। पैसे के लिए कभी डिस्पेंसरी नहीं चलाई। अब मेरी क्या बात है, तो एक दिन मुझको भी टाइम मिला तो मैं जाके बैठा, तो वो तो ऐसे ही जहाँ दवा बनावे खुद, और खुद ही उसको तपास के बाद में दवा बना के फटाफट देवे, तो एक पेशेंट आता है, साहब क्या हो गया? मुझको बहुत गर्मी लग रही है, मुझे ताव आ गया। क्यों, क्या हो गया? वो मैं दोपहर में धूप में घूम के आया तो मुझे ताव आ गया। तो उसने ऐसा डाबा हाथ फैला दिया, बराबर बाटली पकड़ी, उसमें से दवा निकाली उसको। इतने में दूसरा आ गया, क्या हो गया? मुझको बहुत ठंडी लग रही है, मेरे को ताव आ गया। अच्छा, इधर से दवा दिया। मैंने कहा ये भला, दोनों को ताव आया है और दवा जुदी जुदी, ऐसा डिफरेंशिएशन क्यों? क्या एक सस्ती और एक महंगी है, ऐसा कुछ है क्या? बोले नहीं, ये दोनों के ताव का स्वभाव, ताव की जात, यानी जो बुखार आया है उसका स्वभाव जुदा जुदा है, इसलिए दोनों को अलग अलग दवा देंगे। वैसे यहाँ ये बता रहे हैं कि जब कोई रो रहा हो कि अरे मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, आज तक मैंने धर्म नहीं किया, कौन कहता है तू बूढ़ा है? अरे तू तो अनादि अनंत टिकने वाला है ना, कुछ चिंता मत कर, आज से तू अपने आत्मा के बारे में सोच। और इतने में पिनांग जैसा कोई छोटा बच्चा आया हमारे पास, क्या तू जिंदगी बर्बाद कर रहा है, अरे ये जीवन जो है क्षणभंगुर है, कब पानी के बुदबुदे के समान खत्म हो जाएगा, तू स्वाध्याय कर स्वाध्याय कर। तो हमारी ये बहन बेटी बोली, बोली क्या भाई, एक को बोलता है तू अनादि अनंत है, एक को बोलता है तू क्षणिक है, तुम जैसा पवन आएगा ऐसा पीठ घुमाते हो क्या? हाँ नहीं भाई, जहां जो जैसा उपदेश है उस उपदेश के पीछे जो रहस्य है वो हमें समझना है। हम इसलिए क्यों कह रहे हैं कि भाई किसी न किसी कारण से उसको हम शास्त्र स्वाध्याय में लगाकर अपने स्वरूप को जाने पहचाने और अपना कल्याण करें। वैसी यहां बात बता रहे हैं। कौन सी बात बता रहे हैं? ये जो हमने बताया ना कि जीव द्रव्य ना स्वभाव मा तो आठे अजीव कर्मनो त्रिकाल अभाव छे, तो ये स्वभाव की अपेक्षा से कथन कर रहे हैं और हम तो समझ रहे पर्याय की अपेक्षा से। और जब पर्याय की अपेक्षा से बात कर रहे हैं, अरे मैं तो कर्म रहित हूं, ये राग रहित मैं हूं, ये तो आते जाते हैं, मैं क्या करूं? तो ऐसी स्वच्छंदता करके पाप 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 और पाप करे उसके लिए जिनवा नहीं सुनना भी। ये कौन से ग्रंथ भूल जाता हूं हमेशा, तस्य देशना नास्ति ऐसा लिखा है। हाँ पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में ना, यानी उसको देशना भी नहीं देनी चाहिए, उपदेश भी नहीं देना चाहिए ऐसे जीवों को। यानी देखो जो सिद्धांत हमें मिलते हैं ना उससे वो जीव क्या करता है कि अपना स्वच्छंदता का पोषण करता है, अपनी मनगढ़ंत कल्पनाओं को पुष्टि करा के अद्वैत अद्वा क्या कहते हैं, अद्वैत अद्वा यानी जैसा मन में आवे वैसा बिहेव करता है, वर्तनुक रखता है। तो यहां जो जहां जिस नए से और जिस अपेक्षा से जो कथन किया है वह समझना अपना कर्तव्य है। क्या कह रहे देखो, थर्ड लाइन पढ़ता हूं, पन जीव द्रव्यो ना स्वभाव मा, ये पर्याय की बात नहीं कर रहे, स्वभाव मा तो आठे कर्मोनो त्रिकाल अभाव छे, द्रव्य कर्म भाव कर्म थी भगवान आत्मा निश्चय थी भिन्न ज छे, एवा भिन्न आत्मानु भान करीने कर्मोनु नाश करतू ज्ञान प्रकट थाय छे, ज्यां पोते स्वभाव सन्मुख थाय छे त्यां विकार ने कर्म बन्ने छूटा पड़ी जाय छे, एने कर्मनो नाश करियो एम केवामा आवे छे। जेम फूलनी कड़ी अनेक पाखड़ी थी विकसित थई खीली निकले तेम ज्ञान प्रकट थता भगवान आत्मा अनंत गुणोनी पाखड़ी थी पर्यायमा खीली निकले छे, सम्यक दर्शन थता आ अनंत गुणोनो विकास पर्यायमा थई जाय छे। आ गई ना बात, सर्व गुणावस्थे सम्यक्त्व। देखो कितने भी क्यों न सम्यक दृष्टि या ज्ञानी जीव हो, उनके कथन में कभी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं मिलेगा। कॉन्ट्रडिक्शन तो अज्ञानी के माथे में है, नहीं नहीं हमको तो यही निमित्त चाहिए और इसके कारण मेरा भला होगा, ये किसकी मान्यता है? अज्ञानी के ख्याल में। तो ज्ञानी दो बताएंगे, 100 अज्ञानी होवे और वो कोई कथन करेंगे तो उनके कथन में कभी भी विरोध नहीं होगा। तो यहां स्वामी जी कहे या श्रीमद कहे, सर्व गुणावस्थे सम्यक। यहां उन्होंने क्या कहा कि सम्यक दर्शन थता पन अनंत गुणों नो विकास पर्याय मा थई जाय छे, कहूं छे ने ये फिर से वही उन्होंने वही बताया, सर्व गुणावस्थे समकित कहूं छे ने कह के उन्होंने छोड़ दिया। और हम वो जानते थे ना, हमारे जैसे होशियार लोग जानेंगे कि वो श्रीमद जी ने कहा है करके, ये बताया नहीं उन्होंने। ज्ञान ने आनंद आदि अनंत गुणों जे शक्ति रूपे विद्यमान हता ते पर्याय मा प्रकट थाय छे, ख्याल में। तो सम्यक दर्शन किससे प्राप्त होगा, कुदेव कुगुरु कुशास्त्र से होगा के नहीं होगा? हाँ बेन क्या आप, सम्यक दर्शन कुदेव कुगुरु कुशास्त्र से होगा के नहीं होगा? नहीं होगा पक्का। तो सम्यक दर्शन सुदेव सुगुरु सुशास्त्र से होगा के नहीं होगा? अरे वाह वाह वाह, क्या क्या अभी क्या आप लोग के बोलते हैं, मैं भूल गया, वो पक्का थे गया, पक्का थे गया। क्या कह रहे देखो, जे अनंत गुणों, गुणों शू कहवा छे, जे शक्ति रूपे विद्यमान था, यानी गुण तो त्रिकाल है लेकिन ते पर्याय मा प्रकट थाय छे, तो मेरी पर्याय मेरे गुण के कारण या निमित्त से कहो या हमारे द्रव्य की में हो रही है, तो अन्य से कहां से होगी, ये बात समझा रहे। वड़ी ते ज्ञान केवू छे, आत्म आरामम जेनु रमवानु क्रीडावन आत्माज छे, अर्थात जेमा अनंत ज्ञेयोना आकार आवीने झड़के छे, तो पण पोते पोताना स्वरूप मां ज रमे छे। जुओ अनंत ज्ञेयोने जाणनारू ज्ञान पोताना सामर्थ्य थी ज थाय छे, ज्ञेयो थी नहीं। कितनी सीधी बात बताई है, लोगों की समझ में नहीं आती, क्या कैसा बैठता है, क्या समझ में नहीं आता है। क्या कहा? अनंत ज्ञेयो ने जाणनारू ज्ञान पोताना सामर्थ्यथी थाय छे, ज्ञेयो थी नहीं। ए ज्ञान कई ज्ञेयो में जतु नथी, अने ते ज्ञेय कई ज्ञान में आवता नथी। कोई भी बात लो आप, पोताना भाव में अने पोताना क्षेत्र में ज ए रमे छे, आराम पामे छे। अनंत ज्ञेयो ने जाणवा छता पोते पोताना ज्ञान में ज रमे छे। आहा, ज्ञान स्वरूप भगवान प्रति भिन्न पड़ी ने जा स्वस्वरूपे खिली निकलियो, त्या ज्ञेयो ने जे पोताना मानतो हतो ते मान्यता छूटी गई। हवे ज्ञेयो जे छे तेमने जाणनारू मात्र ज्ञान छे, अने ते पोते पोताना सामर्थ्यथी खिली उठ्यू छे। अहो, एक एक कळशमां अमृतचंद्राचार्य देवे गजबनी वात करी छे, શું તેમના વચનમાં ગંભીરતા છે? અનંત જ્ઞેયોને જાણતું થકું જ્ઞાન જ્ઞાનમાં જ રમે છે, અન્યત્ર નહીં। વળી કેવું છે તે જ્ઞાન? અનંત ધામ જેનો પ્રકાશ અનંત છે, અનંત 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 પ્રકાશવાળું તે જ્ઞાન છે। એને એસા હી દિખાયા હમને, જો સોચા થા કે સ્વામીજી કુછ બતાએંગે। ये बात मुझे भी नहीं समझ में आई, मैं सही बोलता हूँ। धाम का अर्थ तो रेठान होता है ना, अनंत धाम, ये अनंत प्रकाश का धाम ऐसा लिया है उन्होंने, जेनो प्रकाश अनंत छे, यानी ज्ञान का जानन रूप शक्ति है वह अनंत है, तो वो अनंत में उस शक्ति को लिया जानने की। मैं समझा नहीं साहब, जेनो प्रकाश अनंत छे, अनंत 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 प्रकाश वाळू ते ज्ञान छे। अने अध्यक्षेन महसा नित्य उदितम प्रत्यक्ष तेज ती थे नित्य उदय रूप छे, भगवान ज्ञान स्वरूप जहाँ प्रकट थयो ते नित्य प्रकट रूप ज रहे छे। केवल ज्ञान थयुं के सम्यक ज्ञान थयुं ते प्रकट ज रहे छे। वळी ते केवुं छे? तो धीरोदात्तम, यानी धीर छे अने उदात्त पण छे, पण ते ज्ञान धीर छे एटले के चंचल नथी पण निश्चल छे, अचंचल छे, तथा प्रत्येक समय नवी नवी पर्याय प्रकटे छे, एवो उदात्त छे। वळी अनाकूलम, अनाकूल छे, इच्छाओती रहित निराकूल अतीन्द्रिय सुखपने छे। धीर, उदात्त અને અનાકુળ એ ત્રણેય વિશેષણો આત્માના પરિણમનની ત્રણ શોભા જાણવી। આવો ભગવાન આત્મા જે જ્ઞાનના વિલાસની રમણતા રમે છે એને આત્મા કહીએ છે। જાવાણી કે જ્ઞાન સે સૂજે લો કાલો સોવાણી મસ્તકણો સદા દેત બોલો।
નમો અર્યંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયર્યાણમ।